ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यन्त्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो विरमकार्तर्यानुः पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयमहामचरणम्। टुडे आज हरिदास ठाकुर का हीरो भाव है। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। मुस्लिम होने पर भी भगवान का नाम करते थे। क्या नाम करते थे? 300,000 नाम करते थे। तो 300,000 नाम कौन सा होगा? कृष्ण कृष्ण होगा ना, राम राम होगा ना, क्या होगा क्या? इसलिए 300,000 नाम जपने के लिए भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे का चर्चा दूसरा और कोई भी विधि नहीं हो सकती। केवल कृष्ण 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 करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए ये 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 यही करते हुए गिनती। कभी ऊंचा स्वर से करते थे, कभी मन ही मन में करते थे, कभी ऐसा करते थे जो स्वयं ही सुन सके दूसरे न सुन सके। उपांशु मानसिक और तीन रूपों में ही ये करते थे। दूसरी बात एक ये है, हिंदू को तो बात छोड़ दो, मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध कोई भी किसी भी जाति का क्यों न हो, भगवान का नाम करने से पवित्र हो जाता है और वो यज्ञ करने का भी काफी अधिकारी हो जाता है। सबनाय कल्पते, किंतु करते किस लिए नहीं है? रुचि नहीं है। हम लोग भी तो यज्ञ नहीं करते तो कोई भक्त कैसे करेगा? इसलिए उसी जन्म में वो इतना पवित्र हो जाता है कि दूसरे जन्म के लिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसी जन्म अजामिल को भी देखिए, सारा पाप किया, ब्रह्महत्या तक किया, अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पिता का माता का एक तरह से द्रोहाचरण हुआ, किंतु कहते हैं कि एक बार नाम करने से ही वो पवित्र हो, उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, भगवान का नाम जप करने से, कीर्तन करने से वो सद्य ही तब समय में ही वो परम पवित्र बन जाता है, दूसरे जन्म की अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार से अजामिल अपने पुत्र के लिए नाम कर और समस्त पापों से छुटकारा उसका हो गया, प्रायश्चित तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर को भी कोई प्रायश्चित, उन्होंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया। जो लोग हिंदू भक्त लोग नहीं कर सकते वो कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको नामाचार्य का करके सम्मान दिया। तो जो भी ऐसी बात है, पवित्र हो गए हरिदास ठाकुर जी तो मंदिर में क्यों नहीं जाते थे दर्शन करने के लिए? वो अपनी दया हीनता इसके लिए नहीं जाते। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग उनको भीतर न जाने दें, ऐसा भी हो सकता है, किंतु उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आज हरिदास ठाकुर के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दे रहे हैं। वे कृपा करें, उनको ब्रह्मा जी का और प्रहलाद महाराज दोनों का मिलित अवतार बतलाया गया है। ब्रह्मा जी दीनता वशत उस हनुमान कुल में जन्मे और सहिष्णुता गुण को जगत में प्रचार करने के लिए प्रहलाद महाराज जी हरिदास ठाकुर ने ब्रह्मा जी में, इसलिए उनको ब्रह्मा हरिदास कहा जाता है। यू कैन ट्रांसलेट।
So today is the disproved day of Namacharya Srila Haridas Thakur. He was born in a Muslim family, but he used to chant Harinam, 3 lakhs Harinam, 192 malas every day. What then did he chant? The 16 names which composed the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Nothing else but this, day and night. Sometimes he would chant Vasa Japa, that means loudly. Sometimes he would chant Vipansha Japa, very quietly, only moving his lips. And sometimes he would chant Manasik Japa in his mind. So, whatever caste you are born in, whether Hindu, Christian, Buddhist, or anything, if someone who simply chants Krishna's name, then they become completely pure. For example, Ajamila, he committed so many serious crimes. He was a thief. He abused his parents. But only taking the name of Narayan once, and he became completely pure. There was no need of any prayaskita, any type of atonement for his activities. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave disciples to Haridas Thakur, Namacharya. The person who studied the perfect example of how to take shelter of Krishna Nam. So on this day, we bring to him the Spirit of His Mercy upon us. He is the combined incarnation of Thakur Brahmaji and Prahlad Maharaj. With Brahma, he appeared and took birth in the Muslim family, being controlled by, inspired by humility, great humility, and to teach humility to the whole world. And Prahlad Maharaj, in this incarnation of Haridas Thakur, is called Sahishnuta. That means how to be tolerant in the face of all types of difficulties. So these two great personalities combined in the form of Haridas Thakur to give these teachings to the world. And we remember his own on this day.
अब हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कुछ कहेंगे। जयति जननिवासो देवकी जन्म बालो, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। जन जन के हृदय में निवास करने वाले और जन जन उनमें निवास करने वाला और देवकी के पुत्र हैं, ऐसी जिनकी ख्याति है अथवा बाद का विषय है, दोनों असल में यशोदा जी के पुत्र हैं इत्यादि को दिखलाते हुए सामने खड़े हुए। अब बतला रहे हैं जलवर परिषद स्वरी दौर विरचन नगर जदवर जदू जितने हैं श्रेष्ठ लोग कौन कौन, जैसे अक्रूर जी हैं, उद्धव जी हैं, महाराज उग्रसेन हैं, सात्यकी हैं और जितने ये लोग हैं, ये सब जदवर हैं, जदुओं में श्रेष्ठ हैं। उनकी उस सभा में सब लोग सेवा करते हैं इनकी, कृष्ण की। और जादवों के पति हैं, जादव पति हैं, इसलिए जदगुरु के द्वेष करने वाले उसे शत्रुता करने वाले कंस जरासंध शिशुपाल दंतपत्र पौंड्रीक वासुदेव इत्यादि जितने हैं दुष्टों का वध किया इन्होंने। और जो अपने निर्जन हैं भक्त धन हैं उनकी दुख हानि और सुख प्राप्ति का विधान करने वाले हैं, इसके द्वारा परम करुणामय है, अहेतु दयालु हैं, उनका जय हो, उनका जय हो। अथवा फिर जदवर का दूसरा अर्थ बतला रहे, जदवर मैंने जदुओं में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा, महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के परिषद में राजसभा में सुधर्मा नामक राजसभा, सुधर्मा राजसभा वहां की थी, वो कहां की थी, देवराज इंद्र की सभा थी, उसको उखाड़ लाए और द्वारकापुरी में स्थापित कर उग्रसेन को उसमें राजगद्दी पर बैठाया। इसके द्वारा यह भी होगा पारिजात पुष्प को उन्होंने देवताओं को जीत कर लाया। देवता लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इंद्र भूल जाते हैं कृष्ण की भगवत्ता और समझते हैं कि मैं ही एक छत्र आधिपत्य हूं सब विश्व ब्रह्मांड का। इसलिए एक फूल भी लाने के लिए आदेश नहीं दे सकते थे पारिजात का, वृक्ष की तो अलग बात है। किसी समय नारदेशी घूमते घामते द्वारकापुरी में आए और रुक्मिणी सप्तभामा इत्यादि 16108 महिषियां वहीं पर बैठी थी और देवराज के बगीचे से एक पारिजात का पुष्प ले आए और कृष्ण के हाथों में दे दिया और बोले जी आपकी सबसे जो प्रिया अधिक है उसको आप दे दीजिए, मेरे सामने में देना होगा और उसको जल्दी में जाना है इसलिए मेरे सामने आप दे दीजिए। कृष्ण सर समझ तो गए ये झगड़ा लगाने वाले हैं, आनाकानी करने लगे, किंतु वो बार बार जीत करने लग गए। इसलिए कृष्ण ने सबके तरफ में देख करके और रुक्मिणी जी को ये देख रहे, रुक्मिणी को देते ही सप्तभामा बड़ी रुष्ट हुई और वहां से सीधे कोप भवन में गई। कृष्ण देखा कि मामला गड़बड़ हो गया, नारद जी तो खूब आनंद करते हुए लौट गए और ये मनाने के लिए कोप भवन में पहुंचे, और जब ही मनाने के लिए सिर्फ शरीर पर हाथ दे रहे हैं वो एकदम बिगड़ जाते, उनके हाथों को फेंक देती है। कहिए तुम क्यों रुकिए, बतलाओ तो कारण क्या है, एक पारिजात पुष्प के लिए तू ऐसी कर रही है? अरे तुम्हारे घर में पुष्प का पेड़ ही ला देंगे पारिजात का, तुम चिंता मत करो। कहिए एक पारिजात का जो फूल नहीं दे सकता वो पेड़ का ला दो। अभी चलो अभी उठा करके गरुड़ पर बैठा है और सीधे देवेंद्र लोग चले गए। देवताओं से मांगा एक वृक्ष का पौधा, नहीं दिया तो उखाड़ लिए और बड़े भयंकर युद्ध में उनको परास्त किया, और परास्त करके पेड़ सहित ले आ करके सप्तभामा के बगीचे में लगा दिया। अब जिस दिन पेड़ लगाएंगे उस शुभ मुहूर्त में इन्होंने कहा सप्तभामा इत्यादि 16,100 रानियों को भी निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण में भेजा, सभी आई और रुक्मिणी भी आई, किंतु रुक्मिणी को ये द्वेष नहीं रहा या मान नहीं कि इनके घर में पेड़ लग गया हमको एक पुष्प मिला, इसलिए गंभीर स्वभाव है वो हीरा है। और सत्यभामा क्या है, हीरा और अधीरा दोनों पर है, तो कृष्ण को कौन प्रसन्न कर सकता है, हीरा अधीरा। ये रस की दृष्टि से सत्यभामा जी का श्रेष्ठत्व है, और साधारण रूप में पारिवारिक दृष्टि से रुक्मिणी जी का गौरव, वो सबको पुत्रवत और पुत्रीवत सब परिवार का पालन करने वाली है, सबको देखने वाली है, कृष्ण की सब प्रकार से सहायता करती है और ये बात बात में मन करने वाली है, और कृष्ण को उनको मान कर इसलिए कहते हैं ये सब लीलाओं को भी चिंतन करना चाहिए। इसी शब्द से जदुबार परिषद स्वर्ग को भी दर्शन
नाउ यू कैन
Swara Dorve Asya Adharma means Yadu Para. who is the best in the Yadu dynasty? Mahesha. The Yadus are his associates. Dorvirasya and Dharma. And by his arms, strong arms, he destroys all Adharma, all irreligious principles. So this is general meaning. So whatever explains some specific names now. So Yadubara means Krishna is the best among the Yadu dynasty. Who are the Yadus? Akur, Uddhava, Ugrasena Maharaj, Satyaki, and others. They are all assembled into the Yadu dynasty. And Krishna is best among them means that all serve Sri Krishna. Dorvirasya Dharma means Krishna. He destroys all of the elements who are hostile to the Yadu dynasty, such as Tansh Maharaj, Jarasandha, Shishupal, Tantavatra, Bodhra Vasudev. Krishna destroys them all. So all of these pastimes come in the line of this verse. It means that it is Krishna's nature that as a pastime, he takes away the suffering of all his devotees and he caters for their happiness. He tries to fulfill their desires. So, Jayati, all glories to that Krishna, who is very, very attentive to the necessities of his associates. So here, Yadu Paramanishad means Krishna himself is an associate of Yadubara, the best of Yadus, that means the emperor of the Yadu dynasty, Ugrasena Maharaj. What does it mean? Sri Krishna, he brought the assembly house of the demigods down to earth and installed it in Dwarka. And there he sat Ugrasena Maharaj on the throne and arranged his coronation as the emperor. There. And Krishna became his citizen and took a junior position as his servant. Also, in this line, it is implied that Krishna defeated the devatas, the demigods, in a war over the Parijat tree. So, one flower of Parijat, which is one species of flower on the heavenly planet, is extremely rare in this world. But what to speak of a whole tree? But Krishna, he fought with the demigods and brought a whole tree to this planet. How did it happen? One day, Narada Rishi, he was wandering here and there, and in the course of his wandering, he came to Dwarka. So there, Krishna was seated in the assembly of 16,108 queens. So Narada Rishi, he brought one Parijat flower with him and he presented it to Krishna and requested him, please present this Parijat flower to your most dearest queen. So then Krishna, he thought to himself, Narada Rishi is making some trouble for me now. So Krishna was in a dilemma and he was wondering what to do. So Narada, he said, I don't have so much time, I have to leave so quickly to fulfill my request and give this to your most dearly beloved. So Krishna, he looked everywhere, and then in the end, he decided
she became furious.
And in angry mood, she left that assembly, and she took off her ornaments, and she retired to Kop Bhavan. One place called Bhavan means the anger room. So then Narada Rishi was very happy that he had instigated a very wonderful pastime and he left. So then Krishna, he went to pacify Satyabhama. She was lying down and Krishna came and touched her. But just like if you touch a snake, she pushed away the hand of Krishna in a very angry mood. And Krishna said, why are you upset? Over one Parijat flower, I'll give you a whole tree. So then Satyabhama, Devi, she said, oh, you cannot even give me one flower. What to speak of one tree? I don't believe you. So then Krishna said, you should come with me. And taking Satyabhama on the back of Garuda, they flew to Indraloka, and then Krishna took one Parijat tree, but Indra objected, and there was a big war. Krishna defeated Indra and all the demigods, then returned to this earth planet, to Dwarka. And then Krishna, he planted that Parijat tree in the courtyard of Satyabhama Devi. So then Satyabhama Devi was pleased, but not fully pleased, not yet. Why? Other queens had not seen. So then she sent an invitation to all the other 16,107 queens that all should come and have the darshan of her whole tree of Parijat flowers. So then when they came, Rukmini also came. But Rukmini, she didn't become angry and she didn't become jealous. Why? Because Rukmini, she has Gambhir Swabhava, that means by nature, her moods are very deep and grave. So she was not upset. So if we understand the moods of heroines, then we know that Rukmini Devi, she's called Dera Nayika. That means the heroine who's very sober. And Satyabhama, what is she? Dera Dera. Fluctuating moods. Sometimes sober, sometimes restless and hot-tempered. So, from the ordinary point of view, if a person is Dera, then they have a better character. But from the point of view, that's called rasa drishti. From the point of view of relishing the rasa of transcendental love, then the Dera Nayaka is superior. So Satyabhama is superior from rasa drishti. So here we see, Yadupada Parishat Swadharavirasana Dhamma, that is Krishna's nature in Dwarka, that he carries out, he fulfills the desires of his wives, he'll pacify them if they become angry, and in this way, he's serving his family members. Therefore, the devotees, they should chant Harina and contemplate the wonderful and merciful qualities of Sri Krishna when they remember this line, Yadupada Parishat Swaya.
देवताओं को पराजित कर वृक्ष को उखाड़ लाए और वो सत्यभामा को घर में रोपण कर दिया और सुधरना सभा को उसी समय ले आए। वो उग्रसेन महाराज को दिया। उग्रसेन कौन? अपना द्वेष करने वाले कंस और उस कंस के पिता उग्रसेन को केवल यही नहीं राज्य पहले दिया अपने राज्य दिया नहीं पूरा राज्य उग्रसेन को दे दिया और सुधरना सभा भी उनको दिया जिसमें वातानुकूल सब व्यवस्था गर्मी में ठंड ठंड में गर्मी उसमें हजार आदमी बैठ सकते हैं 10,000 भी 20,000 आदमी भी और उसमें 10 आदमी भी बैठने की व्यवस्था इच्छानुसार में संकुचित और विकसित होने वाली ऐसी देव सभा को भी लाया राज्य को भी दिया इसका क्या तात्पर्य कृष्ण की परम कारुणता बड़े अहेतुक दयालु हैं उग्रसेन की निजजन है जैसे देवकी और वसुदेव जी अपने माता पिता हैं ऐसे उग्रसेन अपने भक्तों में से श्रेष्ठ यहाँ पर ऐसा प्रश्न हो सकता है कृष्ण यदि ऐसे ऐश्वर्य से युक्त हैं इच्छा मात्र से ध्वंस सृष्टि का और पुनः सृष्टि सर्जन कर सकते हैं इच्छा से तो फिर देवकी जन्म बाद देवकी के पुत्र है ऐसा क्यों कहा गया ये भी करुणा है उनकी क्या करुणा है स्वयं दो रूढ़ी रक्षण धर्म वे अपने भक्तजनों के बिना दार्थाय करोमी विविधा क्रिया अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मैं बहुत सी क्रीड़ाओं को करता हूं उनका विनोदन करने के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए ये सब मैं करता हूं। और अपना जो ऐश्वर्यमय भाव, क्या समस्त ब्रह्मांड के परे भी रह सकते हैं, सारा ब्रह्मांड उनके एक लोक रूप में और सब प्राणियों के अंदर में अणु से भी अणु होकर के रह सकते हैं, उनका स्थूलत्व या हर्षत्व इत्यादि जो गुण हैं वो सब कृष्ण करने में समर्थ हैं और करते हैं। कब? अपने भक्तों को विनोदित करने, प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए असुरों का संहार करने के लिए इच्छा मात्र से कर सकते थे, किंतु कृपा करके अपने भक्तों का नाना प्रकार से विनोदन करने के लिए देवकी के पुत्र के रूप में वो आए। यहां पर दोर्भी, दोर्भी कौन सा वचन है? एक वचन तो है नहीं, दो वचन भी नहीं है, ये बहुवचन दोर्भी क्या है? बालक भी होता है, तो ये बहुवचन हुआ। तो बहुवचन क्यों किया? ब्रज में तो सब समय दो बाहु युक्त थे, दो पूजाएं, किंतु मथुरा में और द्वारका में कभी दो पूजा और कभी चार पूजा। बाणासुर के साथ में युद्ध में चार भुज से उपयुक्त होकर के शंखचक्र गदा पद्म लेकर के युद्ध किया। शिव जी का विशेष गढ़ है ना बाणासुर, कृपा करने के लिए वो कहते हैं हरिवंश में ऐसा लिखा गया है, कभी दुर्भिज रूप में, ब्रज में तो सब समय दुर्भिज चतुर्भुज रूप कभी नहीं, केवल गोवर्धन गिरिराज को धारण करते समय में अपने उस रूप को दिखलाया था चतुर्भुज, कुछ लीला के लिए, बाकी यहाँ पर कभी भी चतुर्भुज के रूप में नहीं दिखे। और एक बार मथुरा में तो दिखलाया था, पैठा गांव में दिखलाया वो लीला, चतुर्भुज रूप में ही असुरों का संहार विशेष रूप में कर, विशेष रूप में असुरों का संहार कृष्ण नहीं करते, ऐसा मालूम होता है कि असुरों का संहार स्वयं कर रहे हैं, किंतु संहार कौन करता है? महाविष्णु, विश्व का पालन भरण पोषण और विनाश इत्यादि कार्य ये सब महाविष्णु का कार्य है, इसलिए कृष्ण के अंदर में महाविष्णु से ये सब कार्य करवाते हैं, तो भी कृष्ण के रूप में करते हैं, इसलिए इसकी व्याख्या दी गई है। हरिवंश उत्तर बाण के युद्ध बाणासुर को कृष्ण के पुत्र कौन इसको चोरी कर ले गया था? अनिरुद्ध को, जिसको मछली खा गई थी, वही तो बना थी और भूल गया। तो करें बाणासुर के युद्ध में भक्तों को आनंद देने के लिए चार चतुर्भुज रूप प्रकट किया। दोर्भी शब्द का प्रयोग इसलिए बहुवचन हुआ है, चारों भुजाओं के लिए। अथवा यदि यह प्रश्न हो कृष्ण क्या ऐसा कार्य करते हैं जिसलिए हम उनको जय युक्त कर रहे हैं, कृष्ण जय हो जय की जय दू इसलिए करते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं दोर्भी, स्वयं दोर्भी, स्वयं मैंने अपनी भुजाओं से। यहाँ पर स्वयं शब्द से पांडव इत्यादि भक्तों को समझो, स्व अपने भक्तों, कौन भक्त? भीम अर्जुन इत्यादि भक्त, इनके द्वारा क्या किया? महाभारत के युद्ध में उसके पहले भी भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया और दुर्योधन के जितने पुत्र हैं, दुर्योधन के जितने भाई हैं उन सब का दुर्योधन और दुशासन और जितने उनके पुत्र थे भाई और पुत्र सुशासन इन सब का विनाश किया भीम के हाथ से किया अपने भक्त अपने हाथ से नहीं कर अपने हाथ से तो किया ही साथ साथ अपने भक्तों के द्वारा पृथ्वी का भूभार हरण करवाया इसलिए अर्जुन भीम इत्यादि जो भक्तजन हैं उनके अपनी भुजा के समान है जो अपनी भुजा से कर सकते हैं इन पांडवों के द्वारा और यहाँ तक कि जो लोग महाभारत के युद्ध में कृष्ण के का दर्शन किया पांडवों के द्वारा वो लोग मरे अथवा पांडव सेना वाले जो लोग मरे कृष्ण को देखते हुए उनकी क्या गति हुई परम गति इसलिए कितने दयालु उस युद्ध में कितने अक्षौणी 7 और 12 18 अक्षौणी दोनों मिलाकर उनमें केवल कुछ लोग बचे बाकी लोग मरे जिन्होंने कृष्ण को दर्शन किया अथवा पांडवों के हाथ से भी मरे उन सब की सदगति हो गई मोक्ष तो बात ही है और किसी किसी को भक्ति भी मिली होगी ऐसे कृष्ण जय युक्त हो अर्थात इसके द्वारा अपनी दोर भी रश्यन न अधर्मन अधर्म का विनाश किया अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा भुजा माने पांडवों के द्वारा उन सब असुरों का विनाश किया उनको सदगति प्रदान की जरासंध दुष्ट राजन्य वर्ग के स्वयं इच्छा मात्र से बध करने में समर्थ हैं तो भी अर्जुन को और भीम को लेकर गए जरासंध की नगरी मगध में राजगृह और वहां पर पहुंच करके ब्राह्मणों का वेश बनाया अपने स्वयं ब्राह्मण के वेश में और भीम को अर्जुन को अपने चेला के रूप में ब्राह्मण का वेश उनको भी यज्ञ पवित्र ही है कृष्ण को यज्ञ पवित्र ही है ब्राह्मण जैसा हो भाव बना लिया और उसके राज दरबार में पहुंचे जब राज दरबार में पहुंचे तो वो पहचान नहीं सका आगे किस लिए ब्राह्मणों आए हैं तुम लोग जो कुछ मांगो मैं दूंगा तो कृष्ण बोले कि हम लोग और तो कुछ नहीं चाहते हैं किंतु चाहते हैं आप हम में से किसी से के साथ में युद्ध करें तो वो हंसने लगा ओ, ये तो वही छलिया है ये भीम अर्जुन है और ये स्वयं यदुपति है उसने कहा कि आपको तो मैंने कितनी बार हराया है इसलिए पराजित शत्रु जो पीठ दिखला करके भाग जाता है उसके साथ में युद्ध नहीं करता इसलिए रणछोड़ जी कहलाए इसलिए तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं करूंगा तू बराबरी का नहीं और अर्जुन तो बृहन्नल्ला माने आधार स्त्री आधार नपुंसक है इसलिए इसके साथ में मैं युद्ध नहीं कर हाँ ये भीम है इसके साथ में मैं युद्ध करता तो युद्ध किया उस युद्ध में दोनों बहुत दिनों तक युद्ध किया किंतु कृष्ण ने चलाकी से भीम को लड़ते समय दिखलाया एक कोई टिनका माने क्या वो मोथा होता है बस ऊपर से दिया और इसको अरे जरासंध एक जरा दानवी के द्वारा मंत्र के बल पर इसके दोनों अंग अलग अलग जन्म में थे और उसने एक जगह कर दिया तो उस जगह में कमजोरी है इसलिए ऊपर से ऐसे लेकर के उसको फाड़ पैरों से लेकर के बस भीम ने ये गदा युद्ध के विरुद्ध भी ये अनुकूल नहीं है
ऐसा अलाउ नहीं है, तभी लेकर के उसको दो फागुओं में फाड़ दिया, मारा गया इस तरह। कृष्ण नहीं मार सकते थे, किंतु भीम के द्वारा यह कर दिया। ऐसे ही तो इस प्रकार से दुर्भि रक्षन न धर्म, अधर्म की अधर्म को नष्ट की करने वाले ने अधर्म को हटाकर धर्म की प्रतिष्ठा इन्होंने भुजाओं के द्वारा
singular case. It is not vibhachanam, plural, but dual case.
But Durga is Bahuvachanam, means more than two. More than two. So here Durga means Krishna has more than two arms.
Okay.
Why more than two arms? Because in Braj, he has two arms. But when he is doing his pastimes among the Yadavas, sometimes he has two arms, sometimes he has four arms.
So, but
we see that Krishna, in
Braj,
he has two arms, he never has four arms. But sometimes, for the sake of pastimes, it happens. For example, when Krishna himself manifested a huge form and said, I am Govardhan, at that time, sometimes he manifested four arms. So for the sake of this special lila, he did this. Therefore, this lila is also included in this verse. So, also, when Krishna disappeared from Rasalila at Govardhan, in Paitagam, there, when gopis were coming, he showed a four-handed form. And gopis prayed to him, oh, whoever you are, please give mercy to us that we can find the son of Nandamaraj. And they went on their way. And when Radhika came, then he could not show his opulence that two arms went inside. So that place is called Paitagam. So this pastime also is, we remember this pastime in relation to this verse, Dorvinashanana. So only for special lila, Krishna can show more than two arms. Otherwise, he's always in a human-like form in Braja. So actually, he says Dorvinashanana, by his arms, more than two, he destroys all persons who are irreligious. So we should know that it is not Krishna's duty to kill demons. Krishna's duty is only to banish rasa. It is Mahavishnu, four-handed form, who is present within Krishna, who has the duty of maintaining the universe by destroying irreligious principles. And therefore it is stated here, Durga, by his arms. It is mentioned also in the Harivamsa Puran that when Krishna fought with Banasura, at that time, to please his devotees, he manifested a four-handed form. So this pastime is also inspiring the hearts of the devotees by this verse. So, we say Jai Ho, all glories to Krishna. Here, Swar means Swargobir means his own arms. It can mean many arms. Why? Because Swar means the arms of his near and dear associates. In other words, before the Mahabharata battle, Jarasandha was killed. Krishna could have killed him, but he didn't. Who killed him? Bhimsen. Bhimsen also killed Duryodhana, Dushasana, and many of their brothers. So, Krishna did not kill him through his own arms, but through the arms of his own near and dear associates, he killed them. So, Yadu Parampari Shat Swar Durga Asyan Madharva. So, once it happened that Arjuna, Bhimsen, and Krishna, they disguised themselves as Brahmins. And in this disguise, they went to the capital of one of the arch enemies of the Yadu dynasty, that is Jarasandha. So, it is the custom that those who are Kshatriyas, they give in charity to Brahmanas. So when they came in the form of Brahmanas, at that time, Jarasandha could not recognize them. So he offered them, all the Brahmanas, if you want anything in charity, you can ask it from me. I will give you anything that you want. So then Krishna said, we don't want to receive any gift from you in charity. The only charity that we want is that you will fight with one of us. Who will you fight with? So then Jarasandha, Duryodhana, Dula, Adiveda, these are the Brahmanas. Who are they? Must be Krishna, Dila, and Arjuna.
अग्रवाल मेरे से बोला कि आप उनको आउट करो, हम आप बैठ के बात कर लेते हैं.
So, first of all, Jarasandha took his opportunity to abuse Krishna and Arjuna. He said, oh, this one here pointing towards Krishna. He's a coward. You know, Krishna is the pastime of being Rancho, walking away from the battlefield. So this person is Rancho, he walks away from the battlefield. So he's a coward, I don't want to fight him. He's not a fit opponent for me. And this other one, Arjuna, when he was doing Vanavas, when he was in exile, he played the role of a eunuch. So he's not a man and not a woman, he's a eunuch. So he's not a fit opponent for me either. Only Bhimsen, he's a fit opponent, I'll fight with him. So then Bhimsen and Jarasandha, they began to fight very ferociously for many, many days. And they were very equally matched and neither of them was winning. So after a long time, Krishna, he took a blade of grass and he split the grass down the middle. So by this, he gave a hint to Bhimsen, what is the weak point of Jarasandha? His name is Jarasandha, why? Because one witch called Jara, she did the Sandhi, she joined him together. He was born in two parts. And the witch, she joined the two parts of his body together. So his weakness was down the middle. So Krishna indicated this by spinning the grass. So then Bhimsen, understanding the weak point of Jarasandha, he put him on the ground and standing on one leg, took the other leg and ripped him in two parts and threw the parts very far away here and there. So Krishna, he couldn't kill Jarasandha himself, but he gave this opportunity to Bhimsen because this is Krishna's nature. It's his pastime.
There was a boon for Jarasandha. He will not be killed by any Jadu dynastic person.
Oh, Jarasandha also had a boon that he could not be killed by anyone in the Yadu dynasty. So Krishna, to keep the boon.
Who gave the boon? Who gave?
Brahma? Or Shankar? Shankar.
So Shankar, he gave this boon. So Krishna, in order to keep intact the boon of his devotee Mahadev, Lord Shiva, he gave this opportunity to Bhimsen and also to glorify Bhimsen, because this is Krishna's pastime, to give honor that his devotees will be glorified in this world. So Yadavara Prashatman Gorbe Rasyana Dharma. So why do we say Jayati, Jayo, all glories to Krishna, may he be victorious? He's very, very merciful. In the battle of Kurukshetra, he could have killed everyone himself when he gave the opportunity to the Pandavas. And not only that, all of the soldiers who were present on the battlefield, they had the darshan of Krishna. And they were killed at the hand of Krishna's devotees. So what will happen to them? They must all get sadhagati. They must all get a transcendental destination. So all glories to Krishna, who is so merciful.
विश्वरूप कौर है, कल सभी लोग पुरुष लोग अपना कौर कार्य संपन्न करें. तीन महीना के बाद में अधिक मास के वजह से पड़ गया और कल ही श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का इसी जगह इसी केशव जी गौड़िया मठ में जहाँ इस हाव है इसी में उनका संन्यास हुआ था. कल उनके संबंध में चरणों में भी पुष्पांजलि देंगे. उनका संन्यास का दिन है और विश्वरूप के संबंध में कुछ बतलाएंगे. विश्वरूप जी चैतन्य महाप्रभु के भ्राता थे, ज्येष्ठ भ्राता, जिसके लिए वो दक्षिण भारत में चारों तरफ खोजने गए. तो उसी दिन ही स्वामी जी को संन्यास हुआ और उनके संबंध में उनके चरित्र के संबंध में कुछ सब वक्ता लगे. और हमारे गुरु जी का भी संन्यास विश्वरूप खौर के दिन ही कटवा में हुआ. और ये शुड अनाउंस ऑल्सो और शुड आई
tomorrow is Vishwarup Mahotsav. The day of Rishi Chaitanya Mahaprabhu honored the disappearance of his brother. And also tomorrow is the day on which Nityananda Purushottam Vishnu Maharaj told us that Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, our Prabhupada, he received sannyas here in Keshavji Goldenberg from Abraham Gurudev Srila Bhakti Prakash.